ओम शांति। भगवान के साथ सर्व संबंधों के सीरीज में आज का विशेष संबंध है बाबा मेरा योगाचार्य है। योग सिखलाने वाला, योग का प्रशिक्षण देने वाला। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय संसार में हर एक व्यक्ति के मन में, दिल में, हर एक के बुद्धि में, हर एक के मुख पर योग की ही आवाज सुनाई देती है। हर एक का योग के प्रति विशेष आकर्षण है, रुचि है, क्योंकि मानव जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं जिन समस्याओं को फेस करने के लिए व्यक्ति के पास पावर नहीं होती है। तो जब किसी के पास कोई पावर नहीं होती है, उसके लिए फिर वो खोज करते हैं कि वो कहाँ से प्राप्त होगी। तो उसके लिए संसार में जो योग सिखाया जाता है, जो सांसारिक योग है, जो वहाँ सिखाने वाले शिक्षक हैं, उनको भी लोग योगाचार्य कहते हैं, योग गुरु कहते हैं। तो संसार में जो योग सिखाते हैं उसमें विशेषकर वहाँ भी राजयोग कहते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग या हठ योग। और उसमें भी विशेषकर जो राजयोग के बारे में बताते हैं उसमें जो 8-9 बातें हैं, यम नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, समाधि, ये 8, इसमें जो 8-9 बातें बताते हैं उसमें विशेषकर जो आसन, प्राणायाम, मुद्राएं या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज उसमें वो सिखाते हैं, क्योंकि उससे जो बॉडी की एफिशिएंसी है, जो बॉडी की रेजिस्टेंस पावर है, वो बढ़ जाती है और उससे फिर बहुत सारे फायदे मिलते हैं। क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ होने से फिर मन भी शक्तिशाली रहता है और उससे जो आने वाली समस्याएं व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में या समाज से, उनको फेस कर सकते हैं। लेकिन इस संसार जो कर्म क्षेत्र है, इस संसार में कर्मों के आधार से जो प्रॉब्लम्स आती हैं कर्मों के फल के रूप में, उन समस्याओं को फेस करने के लिए जो सांसारिक योगा है वो उसमें सक्षम नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस संसार में योगाचार्य बनकर के आते हैं और आप हम सभी को योग सिखलाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा जो योग सिखलाते हैं और संसार में जो योग सिखलाते हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। कुछ समानताएं भी हैं, कुछ और बहुत बड़ा अंतर भी है। तो उसमें पहला अंतर तो ये है कि संसार में जो योग सिखलाते हैं उसका कोई विशेष समय होता है, सुबह का समय या रात्रि का, शाम का समय, एक विशेष समय पर ही वहाँ योग सिखलाते हैं या बताते हैं कि उस समय ही आपको योग करना चाहिए। दिन में कभी भी वो योगा नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिव बाबा जो योग सिखलाते हैं वो कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि में भी। वहाँ सिखलाते हैं कि योग खाली पेट करना चाहिए, भोजन से पहले योगा करना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपका यह योग जो है वो कभी भी कर सकते हो, भोजन से पहले भी, भोजन के बाद भी और भोजन के समय भी। हाँ, किसी भी समय, किसी भी फील्ड में, यदि कहीं जर्नी पर जा रहे हैं तो उसमें भी हम योगा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। लेकिन संसार में जो फिजिकल योग है वो पॉसिबल नहीं है। तो बाबा जो योग सिखलाते हैं वो उस योग को कोई भी कर सकते हैं, बच्चा है, युवा है, वृद्ध है, मेल फीमेल, चाहे कोई पेशेंट है, कोई भी कर सकता है। लेकिन फिजिकल योगा सब नहीं कर सकते हैं। यदि कोई बहुत सीरियस है, पेशेंट है, तो वहाँ योग करने के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप जो विशेष पेशेंट सीरियस है उसको तो ज़्यादा योग करना चाहिए। तो भगवान जो योग सिखलाते हैं वो योग सभी के लिए है, और वो योग सभी कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं। संसार में जर्नी कर रहे हैं आप, हवाई यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पर भी योग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल योगा वहाँ नहीं कर सकते। शमशान में भी योगा ये कर सकते हैं। तो बाबा जो योग सिखलाते हैं वो एक ऐसा योगा है, ऐसा योग है जिसमें सारे योग समाये हुए हैं। दुनिया में जो अनेक प्रकार के योग अलग अलग रूप में सिखलाते हैं, तो भगवान जो सहजराज योग सिखलाता है उसमें वो सभी योग समाये हुए हैं। चाहे ज्ञान योग है, भक्ति योग है, बुद्धि योग है, हठ योग है। तो इस योगा की विशेषताएं क्या हैं, इसकी और कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो बाबा हमें सिखलाते हैं? इसको अनपढ़ भी कर सकते हैं, उसको भी अनपढ़ भी कर सकते हैं। हाँ, इससे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सभी प्राप्त होती है। ये व्यक्ति के चहुमुखी या बहुमुखी प्रतिभा को निखारता है। इससे इसकी कमाई 21 जन्म तक चलती है। हाँ, इससे विशेष बात है कि इससे विकर्म विनाश होते हैं। संसार में जो योग सिखलाते हैं उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते हैं। और इस योग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उस योग में अगर यदि कोई शिक्षक नहीं है और कोई अपनी इच्छा से योग करता है तो उसमें साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन शिव बाबा जो योग सिखलाते हैं उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस योग से जो बहुत सारे फायदे होते हैं, मेंटल, हाँ जी, संस्कारों का परिवर्तन होता है, मानसिक शांति, मानसिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ जाती है, अच्छे रिश्ते बनते हैं, मतलब रिश्तों में भी ये हमारा योग लाभकारी है। फिजिकल रूप में भी इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि जहाँ मन शांत है, एकाग्र है, तो मन की जो एनर्जी है वो शरीर को प्रभावित करती है। तो इस योगा में जो बाबा सिखलाते हैं कि बहुत सहज विधि है कि अपने आप को शरीर से अलग करो और मुझ निराकार बाप को याद करो, कितनी सहज मेथड है, सहज विधि है। लेकिन जब हम इस शरीर से अलग होकर के अशरीर स्थिति में स्थित होकर के जब भगवान के साथ अपना मन बुद्धि लगाते हैं, तो भगवान से, सुप्रीम पावर से जो हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है, वो हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करता है। चाहे मानसिक समस्याएं हैं, फिजिकल समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, या संसार में और भी जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, वहाँ हर प्रकार की समस्या में यह योग कारगर सिद्ध होता है। संसार में जो योग है उसमें माया कम आती है। उसमें कौन सी माया आती है? कुछ काम आ जाता है, लेकिन यहाँ विशेषकर जो नेगेटिविटी है, जो अशुद्धि है, जो माया के विकार हैं, इस योग में वो बाधक होते हैं। और ये योग सूक्ष्म है, ये मन बुद्धि का मनोयोग है, मन बुद्धि का योग है, वो स्थूल योग है, फिजिकल योग है। तो बाबा जो हमें योग सिखलाते, हाँ जी, इस योग से जो है हमारा दुआओं का स्टॉक बढ़ता है, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हमारा जो अच्छे प्रकंपन निकलते हैं वो दूसरी आत्माओं को सहयोग देते हैं, और जिनको उन सहयोग मिलता है उनसे फिर हमारे लिए दुआएं मिलती हैं, और वो हमारे तन मन के लिए फायदेमंद होते हैं। हाँ, हमारा जो योग है इससे पांच तत्वों को भी फायदा होता है, पांच तत्व भी शुद्ध बनते हैं, सात्विक बनते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंच जाते हैं। तो बाबा जो है वो योगाचार कैसे है, बाबा को योगाचार क्यों कहते हैं? हाँ जी, क्योंकि वर्तमान समय संसार में हर एक मनुष्य आत्मा की बुद्धि संसार में भटकी हुई है, कोई ना कोई प्राप्ति के लिए हर एक किसी व्यक्ति से या किसी साधनों से कोई ना कोई प्राप्ति के लिए, कोई सुख के लिए या कोई सहयोग के लिए वहाँ जाती रहती है। तो तो परम पिता परमात्मा या शिव बाबा भगवान पिता बन करके जो आते हैं वो अपने साथ हमारे सर्व संबंध स्थापित करते हैं और हर प्रकार के हमें सेलिब्रेशन देते हैं, सहयोग देते हैं संबंधों के रूप में, या संसार में जो अन्य प्राप्तियां हैं साधनों से वो भी भगवान से हमें प्राप्तियां हो जाती हैं। तो इसलिए हमारा मन बुद्धि केवल एक के साथ कायम रहता है, एक के साथ हमारा मन बुद्धि स्थायी रह सकता है। तो इसलिए शिव बाबा को योगाचार्य कहते हैं। और शिव बाबा को क्यों कहते हैं योगाचार्य? अच्छा, बाबा जो है वो हमेशा आसारी अवस्था में, अर्थात वो योगा अवस्था में, इसलिए। और संसार की जो आत्माएं हैं वो योग, उनका दूसरों के साथ कनेक्शन हो सकता है, दूसरों के साथ वो आत्माएं दूसरों को भी याद करती हैं, लेकिन यहाँ केवल हमारे सभी का केवल एक के साथ योग है। वो हमेशा क्या चाहता है? जैसे वो है वैसा ही हम सभी को चाहता है कि हम भी वैसा ही परफेक्ट बने, वैसा ही सशक्त बने। यह योग मुश्किल नहीं है, यह योग सबसे सहज है। सिर्फ यहाँ पर समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यहाँ समझ चाहिए कि हमें किसके साथ हमारे संबंध हैं, वो कौन है, कैसा है। यदि समझ है तो मुश्किल नहीं है, और समझ है तो, समझ नहीं है तो मुश्किल है। तो वो योग करने वालों के कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, वो डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि मनुष्य का मन लंबे समय से संसार में भटका हुआ है, कहीं ना कहीं सुख लेने के लिए, क्योंकि मन की टेंडेंसी है कि उसको जहां सुख मिलता है वहां भागता है। तो बाबा जो है वो निराकार है, तो निराकार से जल्दी सुख भासता नहीं है, क्योंकि निराकार को, निराकार से सुख लेने के लिए स्वयं को निराकार बनना पड़ेगा, अशरीरी बनना पड़ेगा। तो मनुष्य की जो मन है वो संसार में जो फिजिकल है उनके पास भागता रहता है, और उनसे जो सुख मिलता है तो वहां बार बार जाता है, इसलिए यहाँ थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, लंबे समय से संस्कार नहीं है कि हम निराकार बनकर के निराकार को याद करें, क्योंकि आधा कल्प से हम देवताओं को भी फिजिकल रूप में याद करते आ रहे थे। हम जो राजयोग कर रहे हैं तो हमें फिजिकल फिटनेस के लिए वो जो संसार में सिखाने वाला जो प्राणायाम है, जो आसन है, मुद्राएं हैं, वो भी करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता है। और ये हमारा शरीर अगर स्वस्थ है, शक्तिशाली है, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है, मजबूत है, तो हमें इससे, इसमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो इसलिए वो भी करना जरूरी है, क्योंकि वर्तमान समय हमारा खान पान थोड़ा अशुद्ध है, और साथ साथ जो प्रकृति का क्लाइमेट है वो भी सूटेबल नहीं है। इसलिए जो फिजिकल एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योगासन है, उसको भी करना चाहिए। तो हम, तो हमारा इस राज्यों के पद पर उसका बहुत हमें फायदा मिलेगा, हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। शिव बाबा मेरा हिस्टोरियन है, इतिहासकार है। तो एक्चुअली मैंने देखा कि ये जो संबंध है ये दादा दादी और नाना नानी का संबंध है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है, स्कूल में अभी गया ही नहीं है, हिस्ट्री का टीचर उसको अभी तक मिला नहीं है कोई, तो उसका जो, उसके जो भी प्रश्न होते हैं उसके लिए उसके मम्मी पापा के पास इतना समय नहीं होता है उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ऐसे ही मैंने अपनी नानी से एक बार पूछा, आपने गांधी जी को देखा है? उन्होंने कहा हाँ। कितनी बार? अरे बहुत बार देखा है। तो फिर मैं प्रश्न पूछता गया और नानी जवाब देती गई। फिर मैंने कहा आपने गांधी जी से बात की? हाँ की। तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अरे फोटो में से कोई बात करता है क्या? पूरा मैं मूंज गया कि अरे मैं तो उनको पूछ रहा था। तो फिर आपने गांधी जी को देखा? उन्होंने कहा आपने प्रश्न ही ऐसे पूछा कि देखा क्या? मैंने तो देखा। कहाँ देखा? तो फोटो में देखा। तो बिल्कुल इसी तरह छोटे बच्चे होते हैं और उनके कुछ प्रश्न होते हैं और उनका उत्तर उनसे मिलता है। अब शिव बाबा मेरा इतिहासकार है, तो शिव बाबा भी रोज हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, वो स्वर्णिम इतिहास भी सुनाते हैं, और ये दुखद इतिहास जो आने वाला है और जो हुआ है पहले वो भी बातें बाबा हमें सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा है कि ये जो आप हिस्ट्री पढ़े हो स्कूल कॉलेजेस में वो सिर्फ क्वार्टर है, जो सतयुग त्रेता द्वापर की भी बहुत सारी बातें पता ही नहीं है। और ये जो इतिहास है, बाबा ने कहा कि इतिहास में मुख्य बातें होती है कि समय, स्थान, तिथि। स्कूल में भी एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, तो ये जो हिस्ट्री है सभी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें बहुत याद रखना पड़ता है, डेट याद रखनी पड़ती है, फलाना ने कब जन्म लिया, कब शरीर छोड़ा, फिर उसका उसने ये किला कब जीता, वो किला कब जीता, बहुत सारी डेट्स याद रखनी पड़ती है, तो वो सभी को अच्छा नहीं लगता हिस्ट्री। एक किसी को पढ़ने में अच्छा लगता है, किसी को देखने में अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल तो है ना हिस्ट्री की जो सीरियल्स और मूवीज बन रही है उसकी बहुत ज्यादा मांग है, शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, तो लोग बड़ा इंटरेस्ट से उसको देख लेते हैं। लेकिन देखो हमने कल क्या खाया वो नहीं बता पाते, और इतने 300 साल पुराने वो डायलॉग्स वो देखते हैं, वो तो मनगढ़ंत कहानियां होती है, ये तो झूठा इतिहास ही हमारे सामने होता है। तो शिव बाबा हमें सच्चा सच्चा इतिहास सुनाते हैं, वो रियल डायलॉग्स हमें सुनाते हैं कि हमारे शब्द कैसे थे और कैसे हमें उन शब्दों को फिर से सुनाना है। तो ये जो हिस्ट्री है, बाबा ने बताया कि झाड़ है, गोला है और सीढ़ी का भी चित्र है, तो इसमें हमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कैसे हम आत्माएं उस घर से यहाँ अवतरित हुई, कौन सा वो युग था, सत्ययुग था, फिर कौन सा घराना था, तो वो वहां पर हमारे वो जो फैमिली ट्री है, हमारे माता पिता कौन थे, हमारे दादा दादी कौन थे, नाना नानी कौन थे, वो सारी जो है इतिहास माना एक फैमिली ट्री भी होता है, सारी पूर्वजों की भी वहां पे दी होती है बातें, फिर भाषा कौन सी थी, फिर उसका राज्य कितना बड़ा था, उसका नक्शा कौन सा था, तो उस समय कपड़े कौन से पहने जाते थे, उनका ड्रेसिंग क्या था, वो सारी बातें इतिहास में होती है। तो शिव बाबा मेरा इतिहासकार है, वो और दुनिया का तो इतिहास बताता ही है, लेकिन पर्सनली मेरा मुझे बता रहा है कि मैं कौन था, मैं दैवी वो संतान थे और कैसे मैं राजकुमार था, फिर कैसे कैसे हम राजा से रंक बन गए, वो इतिहास। हाँ, कितने पुण्य किए, आज के वरदान में भी है ना, स्वदेश, सुकर्म, स्वधर्म, स्वरूप, ये चार बातों के ऊपर मेनली फोकस किया जाता है। तो हम जब भी किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ लिखी हुई होती है कि ये इतने साल पुराना है, जैसे देलवाड़ा मंदिर के बारे में भी हम जाते हैं, देखते हैं, लेकिन वो जो हिस्ट्री सुनाते हैं और शिव बाबा हमें जो हिस्ट्री सुनाते हैं, तो इसमें बड़ा अंतर है क्योंकि वो लोग तो स्थूल बताते हैं कि ये मंदिर कब बना, लेकिन उसके अंदर कौन सा रहस्य छिपा हुआ है, क्यों बाबा ने उन आत्माओं के द्वारा वो बनवाया है, वो हमारा ही यादगार कैसे है दिलवाला मंदिर, वो हमारा इतिहासकार शिव बाबा हमें बताते हैं। फिर एक बार ऐसे ही वो एक किला देखने के लिए गए तो बताया गया कि ये शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है, फिर एक शिव सृष्टि करके एक म्यूजियम टाइप था, वहां पे उनका जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरे लाइफ हिस्ट्री वहां पे मूर्तियों के रूप में थी। तो मैंने पहली बार देखा कि उनके जन्म के बारे में ऐसी बातें वहां पे लिखी हुई थी कि उनका जन्म कब हुआ, वो ईयर, वो तारीख, तिथि, वो सब लिखा हुआ था, और फिर लिखा हुआ था कि उन्होंने पहला सूर्य दर्शन कब किया, उस बालक को कैसे विधि सूर्य के सामने लाया गया। तो देखो हम भी ज्ञान सूर्य के सामने कब आए, उसकी किरणें मुझ आत्मा पर कब पड़ी, वो पहली मुरली, वो पहले महावाक्य कौन से है, याद है सभी को कि हमारा है ना, नहीं मीठे बच्चे नहीं, वो तो कॉमन बात नहीं बतानी है। जब हमारा कोर्स हुआ और हम बाबा से मिलने फर्स्ट टाइम मधुबन में आए और बाबा ने हमें कौन सा वरदान दिया? फर्स्ट टाइम वालों को तो अमर भव कॉमन मिलता ही है, लेकिन और भी कुछ होती है, वो जो मुरली होती है स्पेशल। आपको लास्ट सो फास्ट मिला था, मुझे बालक सो मालिक मिला था। तो ओम इधर की ओम शांति भवन की मुरली है। तो मैं तीसरी में था शायद, नहीं मम्मी ने बताया तो बाद में मुरली पढ़ ली। तो माना ये जो है बातें, हम शिव बाबा मेरा इतिहासकार है और वो मुझे मेरा स्वर्णिम इतिहास बता रहा है कि बच्चे तुम ऐसे थे। हम जो इतिहास अभी देखते हैं सुनते हैं स्कूल में पढ़ाया जाता है वो बहुत ही दुखद है कि उन्होंने अपने राज्य को कैसे बचाया, अपने परिवार को कैसे बचाया, वो सब बातें हैं, लेकिन उसमें सुख बहुत ही थोड़ा सा है। फिर दूसरा राजा उस पर आक्रमण कर देता है और उन्होंने जो हिस्ट्री लिखवाई है वो भी वो लोग क्या कर देते हैं, जला देते हैं। फिर उस हिस्ट्री को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें बाद में क्या हो जाती है, बहुत सारी मिलावट हो जाती है। फिर बाद में उसके ऊपर झगड़े ही झगड़े होते हैं। इतिहास के कारण आज भी समाज दुखी होता जाता है क्योंकि बोलते हैं कि नहीं हमारा राजा तो ऐसे था, आपने ऐसे कैसे कहा उसके बारे में। तो ये इतिहास क्या कर रहा है, दुखी दे रहा है। तो हमारा जो सुख का इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास है, वो शिव बाबा हमारे सामने रख रहे हैं और फिर से उस सुख की दुनिया के लिए हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। ये इतिहास सिर्फ बताता नहीं है बाबा, तो नया इतिहास हम रच रहे हैं। स्वर्णिम इतिहास का वो रचनाकार है और हम उसके अंदर के कौन है, पार्टधारी है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। तो अभी हम संबंधों के श्रृंखला में सुनेंगे बाबा का, हमारा बाबा के साथ का जो संबंध है। बाबा मेरा लाइफगार्ड है, लाइफगार्ड अर्थात जीवन रक्षक। तो लाइफगार्ड की चर्चा करने से पहले हम एक दो बातें और देखेंगे, उसके बाद में लाइफगार्ड पे जाएंगे। तो सबसे पहले गार्ड, गार्ड को चौकीदार भी कहते हैं, पहरेदार भी कहते हैं, सिक्योरिटी भी कहते हैं। जो कि कोई बड़े व्यक्ति है उनके पास टाइम कम है, अगर कोई जाके टाइम ज़्यादा न ले भी उससे पहले उनके आगे, रूम के आगे, ऑफिस के आगे बैठे रहते हैं कि जब साहब को फुर्सत होगा उसके बाद ही आप अंदर जाके बात कर सकते हैं, और थोड़ा जल्दी करने का। ऐसे भी होता है कि उनका टाइम बहुत वैल्यूबल होता है। हाँ, डॉक्टर के पास भी होते हैं, या तो घर के रखवाली के लिए भी लोग रखते हैं, ऑफिस के रखवाली, बैंक कंपनीज में ये सब रखते हैं। तो कई बार देखा गया है कि ये जो बाहर के जो गार्ड है धोखा भी दे देते हैं, या तो किसी डर के कारण से भी, धमकी के कारण से भी, या तो लालच में आके भी कई बार धोखा दे देते हैं। हाँ जी, दुश्मन के साथ मिल जाते हैं और बहुत बड़ी धोखा दे देते हैं। लेकिन बाबा जब से हमारा गार्ड बना, तो उस गार्ड को क्या करना पड़ता है, तो पेमेंट भी देना पड़ता है, हर साल पेमेंट बढ़ता रहता है उनका, वो छुट्टी भी लेता है। लेकिन बाबा जब से हमारा गार्ड बना तब से ना तो कभी छुट्टी लिया, ना कभी हमसे पेमेंट लिया, ना उनका सैलरी बढ़ानी पड़ती है, और इतना ईमानदारी से गार्ड के काम करते, सुरक्षा के काम करते हैं, जो हमें हमेशा के लिए निश्चिंत बना देते हैं। तो बाबा हमारा इतना अच्छा गार्ड है। उसके बाद में बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड को हिंदी में कहते हैं अंगरक्षक। तो अंगरक्षक बन के बाबा कैसे हमें, हमारी अंगों की रक्षा करते हैं, कैसे करते हैं? वो तो डॉक्टर का हो गया। अंगरक्षक माना हमारे शरीर का, कुछ दिन पहले न्यूज में आया था, मुख्यमंत्री है वो जो भाषण कर रहे थे तो श्रोता ने उनके ऊपर कुछ फेंका पत्थर, और फेंकते समय उसके माइक के सामने ही खड़ा हो गया उनका जो अंगरक्षक था वो, और कितना उनके अंगरक्षक बॉडीगार्ड कितना उनको बचाया। तो ऐसे ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चाहे बड़े बड़े मंत्री लोगों के पास होता है, जो कोई मतलब दुश्मन उनको कुछ मतलब मारे नहीं नुकसान न पहुंचाए इसके लिए उनको दिया जाता है बॉडी गार्ड VIPs के पास, मंत्री के पास भी तो होते ना VIPs मंत्री, तो चाहे वो देश के बहुत बड़े सेवक चाहे उनके पास भी होता होगा, फिल्म स्टार के पास भी होता है रहता है। तो बाबा बॉडीगार्ड बनके हमें कैसे रक्षा करता है, कैसे रक्षा करते रावण से, शुद्ध ब्रह्मा भोजन बाप के याद में बना हुआ ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, है कि नहीं। माया से बचने के लिए रोज अमृत वेला ताकत भर देते हैं, साथ साथ रहने की प्रतिज्ञा किया है बाबा ने, और साथ रह के हमेशा हमें बॉडीगार्ड बन के रक्षा करते हैं। दूसरी बात है लाइफ सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट और मेरे हिसाब से लाइफ गार्ड दोनों का मीनिंग एक था, इसलिए हमने थोड़ा सा लाइफ सपोर्ट का लिया है। लाइफ सपोर्ट का इस लाइफ सपोर्ट अर्थात जो हम बहुत मरने वाले ही हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत बड़ी हमारी एक्सीडेंट हो गई है और हमें किसी भी तरह हॉस्पिटल ले गया, जैसे स्ट्रेचर पे ले गया, फिर हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर जो प्रोसीजर करते हैं इंस्टेंट अर्जेंट में, चाहे हार्ट अटैक हुआ उसको जो CPR करते हैं, छाती को दबाते ना, तो जो CPR वगैरह करते हैं, चाहे कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है और अचानक उनकी शुगर डाउन हो गया और उनको ग्लूकोज खिला दिया और शुगर खाने से उनकी जो जीवन बच गई वो लाइफ सपोर्ट में आ गया। किसी का पैर नहीं और उसको बैसाखी मिल गया चाहे कृत्रिम पैर मिल गया, वो लाइफ सपोर्ट में आ जाता है। तो बाबा हमें भी कैसे कृत्रिम पैर दे के मीठा मीठा बच्चे का के मीठा खिला के हाइपो में चले गए, इसे सो नॉर्मल मिल आया, अच्छा बना दिया हमको। अभी आता है लाइफ गार्ड, लाइफ गार्ड अर्थात स्विमिंग करते समय, तैरते समय या नौका विहार करते समय, बोटिंग करते समय, किसी भी कारण से या किसी भी कारण से हम डूबने से जो हमें बचाते हैं उसको कहते हैं लाइफ गार्ड। तो लाइफ गार्ड कहे या गोताखोर कहे तो भी होगा, मान लीजिए डूब गए तो निकालेगा भी ना, तो जो हमें डूबने से बचाते हैं उनको हम लाइफ गार्ड कहते हैं। तो लाइफ गार्ड जैकेट होता है, वो पहनने वालों को लाइफ गार्ड जैकेट बोलते हैं, लेकिन जो डूबने से बचाने वाले व्यक्ति होते हैं उसको लाइफ गार्ड कहते हैं। तो लाइफ गार्ड डूबने से बचाता है, तो देखा गया है कि मेरे लाइफ के अंदर में बाबा ने अज्ञान काल में हमें दो बार बचाया। हमने पहले भी यहाँ पे बताया है कि हम तो पूरे गांव से हैं, तो माना एकदम 100% गांव के हैं लौकिक में। तो क्या हुआ वहां पे कि एक बार गांव में तालाब होते हैं, तालाब में व्यक्ति भी नहाते थे पहले, बहुत पुरानी बात है, और भैंस भी नहाती है। तो क्या हुआ भैंस भी नहा रहे थे और हम भी गए थे नहाने के लिए, तो मैं भैंस पे बैठ गया और भैंस पे बैठे तो भैंस जाती गई और भैंस बहुत नीचे चली गई, और मैं बहुत छोटा था तो क्या हो गया भाई बताइए, मैं गया पीछे, भैंस गई आगे। अब फिर भी बाबा उस समय देखिए कितना अच्छा टचिंग किया, जबकि हमें ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुंह से तो बुलबुला आ ही रहा था और हाथ को हमने ऐसे ऐसे किया, किसी ने देखा फिर हाँ सिग्नल दिया, फिर लोगों को लगा कि अरे कोई तो डूब रहा है शायद, पता नहीं, फिर गया फटाफट स्विमिंग करके, फिर हमको खींच के लाया, फिर घर में डांट भी अच्छी खासी पड़ी। तो एक तो पहला बाबा ने लाइफ गार्ड, भैंस तो निकल जाती ना बहुत देर तक डूबी रहती वो, हाँ। फिर दूसरी घटना क्या हुई, एक बार खेत हमारे खेत में ना वो धान लगाने के लिए लेबर लोग थे, तो हमको बोला तुम पानी ले आओ, तो उस समय हैंडपंप नहीं होता था, ये दूसरी बार की घटना, उस समय तो शायद मैं पढ़ भी रहा था 10-12-13 साल का होगा याद नहीं एक्यूरेट। तो फिर मैं कुआं से पानी लेने गया, तो बरसात के मौसम से काई जमी हुई थी। फिर क्या हुआ, मेरा पैर फिसल गया, लेकिन ड्रामा अच्छा था कि हम जो है ना किनारा पकड़ लिया उल्टा होके कैसे भी करके। हाँ दीवार थी ना, फिर दीवार की किनारी पकड़ लिया और पानी नीचे, माना बहुत बरसात के मौसम में पानी की लेवल ऊपर आ जाती है, तो नीचे दिख रहा तो फुल पानी और ऊपर कुछ पता नहीं कि कैसे हमें आना है। बड़ी अब कुछ समझ में नहीं था, उस समय बाबा का ज्ञान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस अब कैसे बचने कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसी समय कोई भाई आया तो बोला, अरे तुम तो नीचे कैसे चला गया। तो मैं कि चला नहीं गया, लेकिन ऐसे ऐसे हुआ बोला उनको। फिर वो बेचारा अकेले से खींच भी नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से बाबा की मदद से वो बेचारे ने हमको निकाला। तो बाबा हमें लौकिक में ना होते हुए भी उन्होंने मदद तो किया ना, नहीं वो भी खींच नहीं पा रहा था फिर भी खींच रहा था, बाबा की मदद मिली उनको। और हम और शायद आप सब से मिलना होगा इसीलिए, और आज सुनाना होगा इसीलिए शायद बाबा ने हमें बचा के रखा अभी तक। तो दो बार हमको ऐसे बाबा ने ज्ञान में आने से पहले ही लाइफ गार्ड बन के हमें बचाया है। ज्ञान के बाद में भी हजारों बार बचाया होगा लेकिन हमको पता नहीं है। उसके बाद में बाबा हमें ज्ञान मार्ग में लाइफ गार्ड बन के कैसे बचाता है। ज्ञान में आने से पहले हम सब विषय सागर में एकदम डूबे हुए थे, हमको पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं, बेहोश हो गए थे, अपनी शुद्ध बुद्ध भूली हुई थी। बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हारे सिर्फ ऊपर के एक बाल ही बचा, तो उस बाल को पकड़ के खींच के हमने बाहर लाया, और बाहर में लाके हमारे अंदर जो है जो पानी भरा हुआ था विकारों का, जब डूबते हैं लोग तो पानी तो भरते ना, फिर उनको ज्ञान सुना सुना के उल्टी कराए उस सबको, और उल्टी करा के अच्छी दवाइयां अच्छी पानी मुरली परमात्म प्यार रूहानी स्नेह दे के हमको जिंदा कराया, ठीक कराया। और ये विषय सागर में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए हमें ज्ञान में चलना है, इसलिए बाबा ने हमें लाइफ जैकेट दिया। तो कौन सी लाइफ जैकेट दिया हमको? पहला लाइफ जैकेट है ब्राह्मण लाइफ के चार आधार स्तंभ। पहला लाइफ जैकेट है सत्संग। कौन सा सत्संग? सत बाप के साथ हमेशा संग में रहने का सत्संग। रोज मुरली सुन रहे हैं लेकिन कुछ नहीं घुस रहा है, ज्ञान छोड़ के चले जा रहे हैं, असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन रोज बाप के संग में रहेंगे, वो लाइफ जैकेट पहन के रहेंगे तो क्या होगा? माया विषय बेतरनी नदी में विषय सागर में हमारी बाल बाका नहीं हो सकती है। पहला लाइफ जैकेट। दूसरा लाइफ जैकेट कौन सा? दैवी गुण की धारणा, जो 36 गुण है ना, हर्षित मुख, सहनशील, धैर्यता, गंभीरता, जो भी है वो, अगर लाइफ जैकेट अगर हम पहन के रहेंगे तो माया के इस सागर में हमें कुछ नुकसान हो सकता है? हम डूब सकते हैं? नहीं डूब सकते हैं। तीसरा लाइफ जैकेट कौन सा है? शुद्ध अन्न। शुद्ध अन्न कौन सा? ब्रह्मा भोजन तो हम खा ही रहे हैं, भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं, और कौन सा शुद्ध अन्न? संकल्पों के शुद्ध अन्न हमें खाना पड़ेगा। आंख से जो हम देखने वाली खाना खाते हैं, वो देखने वाली खाना कौन सा खा रहे, वो देखना पड़ेगा। बाबा ने कहा है देह मना सांप, देह में सांप में मणि को देखो, अर्थात देह के अंदर में भिरकुटी में चमकती हुई आत्मा को देखो। कल बोला सितारा, बाबा बोला नहीं बोलो, सितारा में कोना होता है, कोना चुभता है। तो बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने? आत्मा को देखो। चौथा कौन सा? ब्रह्मचर्य व्रत की धारण। ब्रह्मचर्य की व्रत की धारण तो बाबा के बच्चा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा के आचरण को हमारे जीवन में लानी पड़ेगी। ब्रह्माचरण तभी हमारे लाइफ, अगर ये लाइफ जैकेट अगर पहनेंगे तो क्या होगा, हम सदा सेफ रहेंगे। नहीं तो यहाँ पे तो बहुत सारे सागर है ना, बहुत सारी नदियां है ना, बहुत सारी तकलीफ है ना, और भी लाइफ जैकेट है। सबसे बड़ी लाइफ जैकेट है श्रीमत। श्रीमत में भी खास मुख्य कुमार कुमारी के लिए जो बाबा ने मर्यादाएं दी है कि लंबा समय तक फोन में बातें नहीं करना, किसी के कल्याण के पीछे अपना अकल्याण नहीं कर लेना, वॉकिंग अकेले में नहीं जाना। भाई बहने, जब ये लाइफ जैकेट अगर हम पहन के रहते हैं तो हमारी सेफ्टी रहती है, अगर हम लाइफ जैकेट उतार देते हैं तो ना चाहते हुए हम भैंस नहीं डूबे लेकिन हम तो डूब जाएंगे। और कुछ बाबा की याद। और दूसरी है, सबसे लास्ट है मुरली। मुरली को हमें पीना है, रग रग में समाना है, स्वरूप में लाना है। दादी ने कहा, दादी प्रकाशमणि जी, जो मुरली को पान नहीं करते, मुरली को धारण नहीं करते, मुरली के अनुसार नहीं चलते, वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं है। अगर ये सब अगर लाइफ जैकेट अगर पहन के रहते हैं तो बाबा लाइफ गार्ड हमारी हमेशा सुरक्षा करती रहेगी। ओम शांति।
ओम शांति। ये बाबा के साथ का संबंधों का सीरीज चल रही है, उसमें हमें जो होमवर्क मिला था यानी पेंटिंग होमवर्क है, यानी बाबा क्या सेवर, बाबा सेवियर है, यानी बाबा बचाने वाला है, बाबा मेरा बचाने वाला है। हाँ, तो जिसको बाबा बचाने वाला है यानी उसको किसी बात का डर नहीं है। यानी देखो, बाबा ने हमें कितना बेफिक्र बासिया बना दिया है कि फिक्र से फारी करा दिया है। तो जैसा ही संगम युग पर हम जिस संबंध से बाबा से जो संबंध जोड़ते हैं और जिस संबंध से बाबा को बुलाते, याद करते या पुकारते हैं, तो बाबा उसी संबंध से आकर हमें मदद करते या बचाते हैं। तो बाबा हमें किन किन बातों में बताते हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि जैसे हम ब्राह्मण जीवन में यानी ज्ञान मार्ग में आने के पहले हमारा जीवन कैसा था, किस टाइप का था, कि हम स्वयं को ही भूल चुके थे कि हम आत्मा के बदले स्वयं को देह समझने बैठे थे और देह समझकर पांच विकारों के वशीभूत हुए थे और उसके कारण दुख के गर्त में डूबे हुए थे। तो ऐसे समय पर बाबा ने हमें बचाकर सुख के सुख में लाया, यानी हमारा दुखमय जीवन था तो सुखमय बना दिया। दूसरी बात, जैसे द्वापर युग से हम भगवान को पाने के चक्कर में क्या कर रहे थे, भक्ति, बहुत भक्ति की हमने, भक्ति कर रहे थे। भक्ति में क्या क्या किया, व्रत किए, उपवास किया, शरीर को कितनी तकलीफें दी, यानी गंगा स्नान किया और क्या क्या किया, चारों धाम किया, फेरे लगाए और माता टेकते टेकते हमारा टिप्पर घिस गया और मंदिर बनवाते बनवाते हम पूरे कंगाल हो गए और तीर्थ यात्रा करते करते क्या हो गया, एकदम थक गए, यानी हाँ पैरों को छाली आ गई। इस प्रकारे थके हारे हम भगवान को फुकार रहे थे कि भगवान हमें बचाओ। तो ऐसे समय पर हमारी जो फुकार है वो भगवान ने सुनी और ब्रह्मा के तन द्वारा इस संगम पर बाबा आ करके बाबा ने स्वयं का ही परिचय दिया। तो इस प्रकार बाबा ने भक्ति मार्ग के थकान से बचाकर हमें ज्ञान मार्ग मिलाया। तो इस प्रकार हर समस्या और विकट परिस्थिति में बाबा हमें बचाती है। तो इस पर मैं एक अपने जीवन का वापन रियल ये बताता हूँ कि बाबा ने कैसे बचाया। जैसे आशीष भाई ने बताया, उसको अज्ञान काल में बाबा ने बचाया, तो हमें ज्ञान काल में बचाया। जैसे हम ज्ञान मार्ग में चल रहे थे, एक साल हुआ होगा, तो एक समय की बात है कि हम ऐसी खेती में, यानी वो पानी का पंप है वो चालू करने के लिए जा रहे थे, गए तो उस समय बिजली नहीं थी, बिजली न होने के कारण वो पंप चालू नहीं कर पाए। बाद में उस दिन सारे दिन भर में बिजली नहीं आई, तो बाद में वो बिजली रात में आ गई, रात में 11-12 बजे होंगे उस समय आ गई, और खेत में पानी देना जरूरी था, तो हम अपने बाइक से रात को गाड़ी में चले गए, यानी खेती में गए, और वो पंप चालू किया, पंप चालू करके यानी पानी चालू किया, और बाद में वापस घर आ रहे थे, तो आते समय जो रास्ता था वो जो कैनल है ना, यानी जो पानी का वो नहर बोलते, वो नहर के किनारे किनारे से था, तो उस रास्ते से हम आ रहे थे, और रास्ता मिट्टी का था, तो उसमें हमारी बाइक स्लिप हो गई और मैं कैनल में गिर गया वो बाइक के साथ। तो फिर रात का समय था, उस समय 12-1 बज गया होगा, क्योंकि रात के समय में और वो कैनल था वो पानी से भरा था पूरा, और उसमें 5 फीट तक पानी था, और उसमें फोर्स से पानी चल रहा था, तो मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था, पानी अपने तरफ खींच रहा था मेरे को, और बाहर निकालने की मैंने कोशिश की, लेकिन वो ये साइड थी कैनल की, दोनों वो सीमेंट की थी, उसी कारण बहुत समय से पानी चल बह रहा था और कैनल में, तो वो हम फिसल रहे थे, चढ़ने की कोशिश की मगर मैं फिसल रहा था, तो मैंने उसी समय, क्योंकि रात का समय उस समय कौन आएगा, उस खेती में कोई थे नहीं, तो फिर मैंने उस समय बोला अपना बचना मुश्किल है, तो फिर अपना पूरा डोर बाबा के हाथ में दे दिया, बाबा आपकी सेवा मेरे कोई बचा नहीं सकती इस समय। तो फिर विनोद भाई का परिचय नहीं था उस समय, तो उस समय देखो बाबा की कमाल कि उस समय अचानक एक व्यक्ति आ गया, यानी अपरिचित व्यक्ति, हमने कभी उसको देखा ही नहीं था, हमारे गांव का ही नहीं था वो व्यक्ति, वो उस समय वो रास्ते से जा रहा होगा, तो उसके हाथ में एक बड़ा रस्सा था, वो रस्सी लेकर आया और उसने वो रस्सी डाल दिया, मैंने रस्सी को पकड़कर मेरे को निकाल दिया उसने, और जो मेरी बाइक थी वो भी उसने निकाल दी, और दूसरी आश्चर्य की बात है कि 15-20 मिनट तक तो मैंने कोशिश की बाहर निकालने की, तो 15-20 मिनट तक वो बाइक पानी में थी, तो उसके साइलेंसर में पानी घुस गया होगा, तो स्टार्ट नहीं हो सकती, वो स्टार्ट करके भी दे दिया उसने, और बोले संभाल कर अब जाऊंगे ना, तो मैंने बोला ठीक है जाऊंगा, बाद में मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि आपने इतने मरते मरते मेरे को बचा दिया आपने, तो आपका कितना ऐसा आपका परिचय होता, आप कहाँ के कौन से गांव में रहने वाले, तो उसने कुछ भी बताया नहीं, बोले आप घर में संभाल कर जाओ, बस इतना बोलकर वो मेरे आगे चल निकल गया, अंधेरे में चला गया, बाद में मैं उसके पीछे पीछे बाइक लेकर गया, मगर घर तक पहुंचा मगर वो व्यक्ति मेरे को नहीं मिला। तो इस प्रकार देखो रियल घटने बाबा ने बचा दिया, तो जैसे भक्ति जी वो तो हमारे मराठी में बोल रहा था ना, मरा महाराष्ट्र का ही था, मैंने वो मराठी में बोल रहा था, और जैसे अपन भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना कि भगवान भक्तों को बचाते, इसके पहले आशीष भाई ने एक उदाहरण दिया था, जैसा जो महाराष्ट्र में एक भक्त अपना गोरोबा कुंभार, गोरा कुंभार, वो अपने जितना विट्ठल के जिसमें नाम स्मरण याद में मगन हो गया था कि वो मिट्टी यानी तुड़वा रहा था, तुड़वाते तुड़वाते उसका बच्चा भी वो उसके पाँव के नीचे आ गया, तो उसको भी उसने मट्टी के साथ तुड़वा दिया, और बाद में मरने के बाद जब उसने भगवान को याद किया तो भगवान ने जिंदा कर दिया। ये तो भक्तमाला में लिखा है, कित पर सत्य पता नहीं, मगर ये रियल घटना कि बाबा ने मेरे को बचाया, ये सत्य घटना है। अच्छा ओम शांति।
ओम शांति। सर्व संबंधों की श्रृंखला में आज जो टॉपिक मुझे मिला है, बाबा मेरा फायर एक्सटिंग्यूशर है, तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। फायर माना आग, एक्सटिंग्यूशर माना बुझाने वाला या अग्निशामक। तो बाबा कैसे हमारे जीवन में अग्निशामक बन के आता है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा स्थूल आग पर चर्चा कर दे, तो आग लगती कैसे है उसको, आग लगाने वाला भी चाहिए, लेकिन जो उसको तीन एलिमेंट चाहिए, जैसे हवा चाहिए और फ्यूल चाहिए, कोई भी लकड़ी या तेल, और फिर फ्यूल हाँ ताप बोलते हैं उसको, हीट हीट, तो ये तीन आग, तीन में से एक है तो आग नहीं लगेगी या ज्वाला नहीं बनेगी। तो आग तो एक तो जैसे आग के भी प्रकार ऐसे स्थूल दुनिया में जो बांटे गए हैं, फायर जो ब्रिगेड होती है और आग बुझाने वाले जो होते हैं सारे, तो 6 ग्रेडों में बांटी गई है। तो पहली जो ग्रेड है ए ग्रेड में लकड़ी, पेपर, रबर और और कुछ सॉलिड सॉलिड हाँ कपड़ा आता है इसमें, तो ये ए ग्रेड में है। बी ग्रेड में है जैसे डीजल केरोसिन पेट्रोलियम पदार्थ, हाँ तो ये बी ग्रेड में है। और सी है, सी में गैस गैस आता है जैसे सीएनजी गैस है, एलपीजी गैस है, जो भी गैस है। और डी ग्रेड में, डी में मेटल आता है, मेटल के द्वारा भी आग लगती है, मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम आदि। और ई ई ग्रेड में आता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक में शॉर्ट सर्किट लग जाती है, आग लग जाती है। और एक है के ग्रेड के, के में किचन, किचन में जो आग लगाती है लगती है छोक लगाती समय कुकिंग ऑयल से, तो ये ग्रेड है छह आग के प्रकार। और इनको बुझाने के लिए भी जो है एक्सटिंग्यूशर बनाए गए, कौन सी आग को कौन सा एक्सटिंग्यूशर चाहिए ये प्रॉपर इसको यूज किया जाता है। तो ए ग्रेड में जो बुझाने के लिए है लकड़ी है पेपर, ये आग बुझाने के लिए वाटर एक्सटिंग्यूशर, वाटर एक्सटिंग्यूशर बनाया गया है। और इसमें एक केमिकल पाउडर भी होता है, वो केमिकल पाउडर जो होता है वो सभी ड्राई केमिकल पाउडर वो तो सभी में चलता है, सिर्फ वो किचन में यूज नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार एक वाटर एक्सटिंग्यूशर है। फिर दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका पेट्रोल डीजल है जो बी ग्रेड इसमें यूज किया जाता है। और फिर फोम, फोम एक्सटिंग्यूशर होता है, ये पेट्रोल में भी यूज होता है और ये जो गैस है गैस में भी यूज किया जाता है ये। और चौथा है रेती से तो बुझाते, और एक है उसका नाम फोम हो गया, ड्राई केमिकल पाउडर हो गया, हाँ ड्राई केमिकल पाउडर ये तो सभी में चलता ही है। और फिर इलेक्ट्रिक के लिए ये वाटर वाला यूज नहीं कर सकते, नहीं तो करंट लग सकते खतरे वाला, तो इसमें ये CO2 वाला यूज कर सकते हैं। और किचन, किचन के लिए इसमें से जो भी बताए ये यूज नहीं करते, किचन के लिए एक सेपरेट बनाया पेट एक्सटिंग्यूशर, पेट एक्सटिंग्यूशर तो ये किचन में यूज करते किया जाता है। किचन में वैसे जैसे अपन जनरल बनाते हैं तो यहाँ तो नहीं है, तो समझो बड़ा कढ़ाई में लगा दे तो बड़ा बर्तन ढक देते तो आग बुझ जाती है, या फिर बड़ा कपड़ा डाल देते हैं। तो इस प्रकार ये स्थूल आग और आग बुझाने के साधन है। तो और जो जंगलों में भी आग लगती है वो जनरल जंगल आग बोलते हैं, वो तो एक तो लगाई जाती है या एक अपने आप भी लगती है, गर्मी के दिनों में पूरा वायुमंडल गर्म होता है तो वो लग जाती है। और माउंट आबू के पहाड़ों में भी लगी थी 2 साल पहले आग, तो हमने देखा कि कैसे वो हेलीकॉप्टर के द्वारा नकी लेक से पानी निकाल कर बुझाई जाती है। जंगल के आग पर एक कहानी आती है कि एक चिड़िया होती है तो आग बुझाने में मदद करती है, तो किसी ने पूछ लिया तो आपके बूंद भर पानी से क्या आग बुझेगी, तो चिड़िया ने जवाब दिया था आग बुझे या ना बुझे जब इतिहास लिखा जाएगा तब इतिहास आग बुझाने वालों में भी मेरा नाम होगा। तो ये एक एग्जाम्पल आता है। और महाभारत में भी एक प्रसंग आता है, महाभारत में जो लाक्षाग्रह में लगाई थी, हाँ तो शकुनी मामा और कौरव मिलकर एक षड्यंत्र रचा गया था कि कैसे पांडवों को मतलब खत्म किया जाए, मतलब एक तो उन्होंने एक जहाँ रुके थे लाक्षाग्रह में, लाक के द्वारा वो भवन बनाया गया था, तो वहाँ वो आग लगाने का प्रबंध किया था। लेकिन विदुर नीति के द्वारा विदुर ने पता चल गया तो उन्होंने सुरंग खोद के निकाल दिया। तो यज्ञ हिस्ट्री में भी इसका यादगार क्या है, लाका भवन को आग लगा दी, आग लगाई थी या लगाने कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा आग लगाई, तो ये भी एक हिस्ट्री में वर्णन आता है। तो और एक उदाहरण आता है इसमें कि बिल्ली के पुंगरे जब आग लगी थी, कुमार था और उसको पता था कि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया है, वहाँ जो घड़े थे तो उसने सोचा कि जब आग लगाएंगे उस समय निकाल देंगे, लेकिन वो भूल जाता है तो आग लगा दिया पूरा जल जाता है, तो फिर उसको याद आता है कि आग लग चुकी है, कैसे इन्हें बचाया जाए, तो वो भगवान को याद करता है और याद करते करते फिर मतलब बेहोश हो जाता है। बाद में जब आग बच्चे निकल जाते हैं आग ठंडी होने के बाद, तब वो चार घड़े कच्चे रह जाते हैं और वो बच्चे भी निकल जाते हैं, तब वो शुद्धि पर आ जाता है और वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो अभी हम सूक्ष्म आग देखेंगे, सूक्ष्म आग ये स्थूल आग देखा, तो सूक्ष्म आग है विकारों की, कैसे मनुष्य जीवन को त्राई त्राई कर देती है। सारी दुनिया इस विकारों की आग में जल रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में। तो ये अग्नि ये आग कब से लगी है? द्वापर से 2500 वर्षों से। तो ये लंबी समय से चलने वाली आग है। हम देखते हैं कि कई तेल की कुआ होती है अरब कंट्री में, तो वो कई सालों से जलती रहती है, लेकिन ये तो बहुत 2500 सालों से जल रही है, तो सबसे पुरानी आग है। तो ये आग स्वयं बुझाने के लिए कुछ विशेष फायर फाइटर चाहिए, फायर ब्रिगेड चाहिए, तो फायर एक्सटिंग्यूशर बाबा बनके कैसे आते हैं और ये इस दुनिया को, इस दुनिया में जैसे फायर एक्सटिंग्यूशर केंद्र खोलते हैं, जैसे गवर्नमेंट का आर्डर होता है कि हर नगर पालिका में फायर ब्रिगेड होनी चाहिए, उसी प्रकार बाबा भी आके ये सारे विश्व में फायर ब्रिगेड स्थापन करते हैं, मतलब ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र। तो सारी दुनिया में ये कार्य चल रहा है और बाबा के बच्चे कैसे कैसे अपने जीवन में लगी हुई आग बुझा रहे हैं, हाँ स्वयं की आग और दूसरों की भी आग बुझाने में प्रेरित कर रहे हैं, एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। 101 फायर 108। और यहाँ जो मधुबन में रमेश भाई हैं, तो यहाँ मधुबन में भी एक डिपार्टमेंट है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो रमेश भाई जी शांतिवन में चलाते हैं तीनों कॉम्प्लेक्स का। तो फायर एक्सटिंग्विशर की भी हर वर्ष एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी डेट लिखी जाती है उसमें और वो चेंज करते रहना होता है, और हर फायर एक्सटिंग्विशर पर ग्रेड लिखे होते हैं, जैसे बताया कि ABC कौन सी आग की, तो ABC ये हमारे बाबा कमरा है, इसके साइड में जो बाइक रखी है वहां पर ये रखे गए फायर एक्सटिंग्विशर, और कई भी 5 फीट की दीवार में लटकाए जाते हैं, 5 फीट की ये छोटे वाले। तो बाबा भी अभी फायर एक्सटिंग्विशर बन हम आत्माओं की आग बुझा रहे हैं और हम ये अपने जीवन में शीतलता का अनुभव कर रहे हैं। और कल की मुरली में था, क्या था कि माया की गर्म हवा चल रही है, हाँ तो AC लगा लो, तो इस प्रकार अभी हम अपने जीवन में भी AC आ गई है और सभी शीतलता का अनुभव कर रहे हैं, इस प्रकार हम हाँ ज्ञान बरसात से ये शीतलता अनुभव कर रहे, माया की आग को बुझा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।